ऑप्शन थे 30 जनवरी 1985 अव्यक्त मुरली। तो कल हम पढ़ रहे थे कुमार, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होगी। नॉलेजफुल अर्थात रचता को तो जानने वाले, रचना को जानने वाले और मायावी के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले, ऐसे नॉलेजफुल पावरफुल सदा विजयी है। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना, तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार पर होते हैं? शस्त्र के आधार पर। बंदूक है तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वह पावरफुल जरूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई, यह नॉलेजफुल नहीं हुआ। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है, जैसे बुखार। समझदार जो होते हैं वह बीमारी को पहले से ही जान जाते हैं। बुखार आने वाला होता है तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है, पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा तो चलता फिरता रहेगा और बुखार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। तो ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना, या आपको भी माया आती और भगाने में टाइम लगाते हो, शक्ति को देखकर दूर से ही दुश्मन भाग जाता है। अगर आ जावे फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है। जैसे उदाहरण कौन सा दिया था, बार बार कोई बीमार हो तो कमजोर हो जाता है, और बार बार पढ़ाई में फेल हो तो क्या कहते हैं उसे, ये पढ़ाई में कमजोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदत हो जाएगी, और बार बार हार खाने से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। बार बार हार खाने से शाऊ भाई नहीं आए हैं। बार बार हार खाने से संगम युग पर क्या होगा, सतयुग में क्या होगा और द्वापर में क्या होगा? संगम युग पर बार बार हार खाने से धर्मराज की मार खानी पड़ेगी, और संगम युग पर बार बार हार खाने से सतयुग में देवताओं के लिए हार बनाने पड़ेंगे, और द्वापर से भक्त बनकर देवताओं के गले में हार पहनाने पड़ेंगे। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदत हो जाएगी, और बार बार हार खाने से कमजोर हो जाएंगे। इसके लिए शक्तिशाली बनो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है, युद्ध में अपना समय नहीं गंवाती, विजय की खुशी मनाती है। तो कभी किसी बात में कमजोर ना हो। यहाँ तक कल पढ़ा था, अभी आज से बाबा कह रहे हैं कुमार बुद्धि सालिम है। सालिम अर्थात सालिम अर्थात लंबी पवित्र। सालिम अर्थात जो कहीं पर भी खंडित नहीं है, अखंड पूर्ण। दो अर्थ है उसके, एक अर्थ तो है जो कहीं पर भी खंडित नहीं है, संपूर्ण पूरा। दूसरा अर्थ है दृढ़। तो ऐसे दो अर्थ है सर, दृढ़ पक्का। तो कुमार बुद्धि सालिम है, सालिम अर्थात अखंड है, कहीं पर भी खंडित नहीं है बीच से। अधर कुमार बनने से बुद्धि क्या हो जाती है, कमजोर
बंट जाती है।
सालिम के विरोध में बताओ, बुद्धि बुद्धि बट जाती है। कुमारों को एक ही काम है, अपनी ही जीवन है, उन्हों को तो कितनी जिम्मेवारी हो जाती है। जो कुमार है उनको एक ही जीवन है, अपनी ही जीवन, और जो दूसरे हैं उनको डबल जीवन। उन्हों की तो कितनी जिम्मेवारी हो जाती है, आप जिम्मेवारियों से स्वतंत्र हो, उस तरह की जिम्मेवारी। जो स्वतंत्र होगा वह क्या होगा, आगे बढ़ेगा, बोझ मालिक होगा, और बोझ वाला धीरे धीरे चलेगा। स्वतंत्र हल्का होगा वह तेज चलेगा, तो तेज रफ्तार वाले होना एक रस हो, सदा तीव्र अर्थात एक रस। ऐसे भी नहीं 6 मास बीत जाए, जैसे है वैसे ही चल रहे। 6 मास पहले जहां थे अभी उससे कई गुना हम आगे बढ़ चुके हो। इसको भी तीव्र गति नहीं कहेंगे, पर बाबा तीव्र गति किसको कह रहे हैं? तीव्र गति वाले आज जो है, कल उससे आगे, परसों उससे आगे, इसको कहा जाता है तीव्र गति। तो सदा अपने को शक्तिशाली कुमार समझो। ब्रह्मा कुमार बन गए सिर्फ इसी खुशी में रहे, शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। ब्रह्मा कुमार बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार सदा समीप होते हैं। अब के समीप वाले राज्य में भी समीप होंगे, अभी की स्थिति में समीपता नहीं तो राज्य में भी समीपता नहीं। अभी की प्राप्ति सदा की प्रलब्ध बना देती है, इसलिए सदा शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मा की, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति शक्ति है या श्रेष्ठ विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगाने की शक्ति है, तो कल्याणकारी कुमार होना, अकल्याण करने वाले नहीं। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, स्वप्न में भी कल्याण की भावना हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ शक्तिशाली कुमार। शक्ति द्वारा जो सोचे वह कर सकते हैं, जो वही संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हो। ऐसे नहीं संकल्प आज किया कर्म पीछे, संकल्प और कर्म एक हो और साथ साथ हो, ऐसी शक्ति हो। ऐसी शक्ति वाले ही अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो सदा सेवा में सफल बनने वाले हो या कभी खिटखिट करने वाले हो, मन में, कर्म में, आपस में, सब में ठीक, किसी में भी खिटखिट ना हो। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी कुमार समझो, तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाई होगी। 30 जनवरी 1985 की मुरली है। बाबा कह रहे कुमार बुद्धि सालिम है, अधर कुमार बनने से बुद्धि बट जाती है। कुमारों को एक ही काम है, अपना ही जीवन है। उन्हों को तो कितनी जिम्मेवारियां होती है, आप जिम्मेवारियों से स्वतंत्र हो। जो स्वतंत्र होगा वह आगे बढ़ेगा, बोझ वाला धीरे धीरे चलेगा। स्वतंत्र हल्का होगा वह तेज चलेगा, तो तेज रफ्तार वाले होना एक रस हो, सदा तीव्र अर्थात एक रस। ऐसे भी नहीं कि 6 मास बीत जाए, जैसे है वैसे ही चल रहे हैं। इसको भी तीव्र गति नहीं कहेंगे। तीव्र गति वाले की परिभाषा क्या दी बाबा ने आज? आज जो है कल उससे आगे, परसों उससे आगे, इसको कहा जाता है तीव्र गति। तो तीव्र गति अर्थात आज जो है कल उससे आगे और परसों उससे आगे। क्या
बहुत आगे?
बहुत आगे। तो जो हम आज है कल उससे आगे हो और परसों उससे भी आगे हो, ये तीव्र गति की परिभाषा है। क्या ऐसा है? थोड़ा थोड़ा तो है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि नहीं है, है। हम आगे ही है, जीवन हर पल प्रतिपल कुछ ना कुछ हमें सिखा रही है, जीवन के अनुभव हमें आगे बढ़ा ही रहे हैं, परंतु हम सीख नहीं रहे उनसे। जो भी घटनाएं इस जीवन में हो रही है, इस सृष्टि चक्र में, इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कल्याण है, पर हमें रुकना होगा और उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस सीन में क्या कल्याण थी। कुछ ना कुछ कल्याण, कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ हमारी उन्नति हर एक चीज में हो रही है। तो आज से हम कल आगे हो और परसों उससे भी आगे हो, इसको बाबा ने तीव्र गति कहा है, इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। तो सदा अपने को शक्तिशाली कुमार समझो। ब्रह्मा कुमार बन गए सिर्फ इसी खुशी में रहे, शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। कल कहा था कि शक्ति कैसे आएगी, ज्ञान से, नॉलेज से। ब्रह्मा कुमार अर्थात नॉलेजफुल, ब्रह्मा कुमार अर्थात समझदार, ब्रह्मा कुमार अर्थात ज्ञानी। तो आत्मा तो स्वयं में ज्ञान की शक्ति भरनी है, योग की भी पावर भरनी है, ये दो पावर भरनी है। अगर ब्रह्मा कुमार बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार कैसे रहेंगे, सदा ही समीप रहेंगे। अब के समीप वाले फिर राज्य में भी समीप होंगे, अभी की स्थिति में समीपता नहीं तो राज्य में भी समीपता नहीं। अभी की प्राप्ति सदा की प्रारब्ध बना देती है, इसलिए सदा शक्तिशाली। ऐसे शक्तिशाली ही क्या बन सकते हैं, विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मा की शक्ति, स्वयं में हमको शक्ति भरनी है। बाबा ने कभी अव्यक्त महावाक्य उच्चारे थे, जैसे बाप ने तुम सब की पालना की है, अब तुम्हें भी क्या करना है, सभी की पालना करनी है। इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यज्ञ में जो है वो है दादी प्रकाशमणि जी का। दादी ने वही किया जैसे बाबा ने सबकी पालना की थी, वैसी ही पालना दादी ने सबकी की। कभी शांतिवन में एक सभा में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति भी आए थे और बहुत बड़ी सभा थी। तो दादी ने वहां पर प्रश्न पूछा था। 20,000 की सभा थी वो बाबा मिलन की, उसमें कुछ बहुत सारे अति बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। तो दादी ने प्रश्न पूछा था कि आज आप क्या खाना चाहते हो, इतनी बड़ी सभा से प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था, क्या क्या खाने की आज इच्छा है वो बताओ। तो वो जो जिन्होंने साइकोलॉजी स्टडी की थी और जो इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने कहा था ऐसा प्रश्न 20,000 सभा को पूछना ये कोई साधारण आत्मा नहीं पूछ सकती है, इसमें बहुत पावर चाहिए इस तरह का प्रश्न पूछने के लिए कि किसको क्या चाहिए वो बताओ तो आज वो मिलेगा। इस प्रश्न में अगर किसी ने बता दिया तो वो करना भी पड़ेगा, ये भी पावर चाहिए करने की। तो उन्होंने कहा था ऐसा जो प्रश्न है सब नहीं पूछ सकते, जिनमें पालना देने की संस्कार है, रॉयल संस्कार है, वही आत्मा इस तरह के प्रश्न पूछ सकती है, बाकी पूछ नहीं सकती है। बहनों की जब बहनें जब भट्टी के लिए आती थी तो दादी उन बहनों से पूछती थी कि मेरी बहनों क्या चाहिए बताओ, तो दादी आज आप सबको दे देगी। चाहे दादी ने एक बार हमने सुना है हाथ उठवाए थे बहनों के लिए कि जिनके सेंटर पर 5,000 से कम पैसा जिनके बैंक अकाउंट में है वो आज दादी से मिलेंगे, और दादी ने सबको 25,000 का चेक दे दिया था बिना कुछ सोचे। ये इस तरह के जो संस्कार जो है ना, ये बहुत ऊंचे संस्कार है, मतलब इसमें पालना देने के संस्कार है, उसमें फिर कुछ सोचने की बात ही नहीं, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं। और एक बात हमने दादी के विषय में सुनी है, दादी हमेशा पिकनिक पे लेके जाया करती थी सबको, तब पीस पाक भी नहीं था, यहाँ पहाड़ियों में यहाँ वहां। तो एक बार एक विदेश का भाई आया था, तो ये जो विदेश का भाई था वो जो था वस्तुओं में से वाइब्रेशंस पहचानता था, वस्तु जो होती है ना उससे किस तरह के वाइब्रेशंस है उसके ऊपर उसने स्टडी की थी, एक विदेश का भाई था। तो पिकनिक जो चल रही थी तो वहां पर चप्पलें निकाली हुई थी सबकी, तो उसने एक चप्पल चप्पल को पकड़ा, कहा कि ये जो चप्पल है इससे कुछ बहुत पावरफुल वाइब्रेशन आ रहे हैं, और वो चप्पल लेके घूमता फिरा, किस बहन की चप्पल है ये? वो दादी की चप्पल थी। चप्पल लेके वो घूम रहा था, ये किसकी चप्पल है, ये किसकी चप्पल है, क्योंकि उसके पास कुछ यंत्र भी थे इसे पकड़ने के, हैंड वाले, उसमें वो यंत्र से वो उसने डिटेक्ट किया कि इसमें जो वाइब्रेशन आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली प्यूरिटी के वाइब्रेशन इसमें से आ रहे हैं। इसके लिए दादी कहती थी ना, कुमारों की भट्टियों में दादी हमेशा कहती थी, हाथ उठवाती थी, कौन कौन कुमार है जिनकी बुद्धि, जिनका बुद्धि योग अब भी भटकता है, केवल दादी और कुमार, बाकी कोई नहीं, लॉक्ड, बाकी कमरा बंद। तो उसमें से उठाते भी थे कई सारे कुमार, दादी के सामने कौन झूठ बोलेगा, हाथ उठा के बताते थे दादी के, दादी हमारा बुद्धि योग यहाँ यहाँ जाता है, हमारा बुद्धि योग इस बहन में जाता है। तो दादी उन कुमारों को कहती थी, क्या कहती होगी, जो लोग ये कहते थे दादी के सामने कि हमारा बुद्धि योग इस बहन में जाता है, ऐसे ऐसी बुद्धि में इस बहन की तरफ जाती है बुद्धि, तो दादी उन सबको क्या कहती होगी? निकलेश भाई सोमा कर दो, और
उनको अपनी माँ समझ लो,
उनको माँ ही समझ लो अपनी। और नागेश भाई क्या कहती होगी दादी?
बेटी समझ लो या माँ समझ
लो। दादी अपना उदाहरण देती थी, हे कुमारो सुनो, दादी के जीवन में, दादी की बचपन से लेकर तो आज तक किसी भी व्यक्ति में, किसी भी पुरुष में, किसी भी वैभव में आज तक आंख नहीं डूबी। तो सदा अपने को शक्तिशाली कुमार समझो, ब्रह्मा कुमार बन गए सिर्फ इसी खुशी में रहे, शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। केवल अविवाहित रहना शक्ति को अर्जन करना नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य धारण करना ही प्यूरिटी धारण करना नहीं है, केवल प्योर रहना और उस प्यूरिटी की पावर न आना ये प्यूरिटी की महानता नहीं है। प्यूरिटी अर्थात वो प्यूरिटी की पावर हम में धारण हो जाए, वो प्यूरिटी की पावर हम में कार्य करने लगे, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से और हमारे संकल्पों के द्वारा, तब कहा जाएगा कि ये प्यूरिटी है। नहीं तो संसार में भी कितने लोग हैं जो ब्रह्मचारी रहते हैं, क्या वो शक्तिशाली है? केवल ब्रह्मचारी रहने से कोई शक्तिशाली नहीं बनता है, परंतु वो प्यूरिटी शक्ति बन जाए हमारे अंदर, उसके लिए साधनाओं की आवश्यकता है। केवल मधुबन आ गए, संसार को छोड़ दिया, इससे प्यूरिटी की पावर नहीं बनेगी। ऐसे तो हजारों हैं, पर क्या सभी शक्तिशाली है? नहीं। प्यूरिटी केवल धारण कर लिए और जीवन व्यर्थ में जा रहा है, प्यूरिटी धारण कर लिए परंतु साधनाएं नहीं और नकारात्मक भाव भरे हुए मन में, निगेटिविटी ही निगेटिविटी है हर आत्मा के प्रति, तो वो कहां प्यूरिटी की पावर कहेंगे उसको? अब के तो ब्रह्मा कुमार बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार सदा समीप होते हैं, अब के समीप वाले राज्य में भी समीप होंगे। अभी की स्थिति में समीपता नहीं तो राज्य में भी समीपता नहीं, अभी की प्राप्ति सदा की प्रलब्ध बना देती है, इसलिए सदा शक्तिशाली। ऐसे शक्तिशाली ही क्या बन सकते हैं? विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्माओं का काम नहीं है, विश्व कल्याण के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत पावर, बहुत शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति स्वयं में धारण करनी है। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मा की, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति शक्ति है या श्रेष्ठ विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगने की शक्ति है तो कल्याणकारी कुमार होना, अकल्याण करने वाले नहीं। अकल्याण करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति नहीं चाहिए, विनाश के लिए इतनी शक्ति नहीं चाहिए, परंतु कल्याण करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्रिएशन कंस्ट्रक्शन के लिए शक्ति की आवश्यकता ज्यादा है। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, ये प्रश्न हमें स्वयं से पूछना है। हम कह रहे हैं हम कौन है, विश्व के आत्माओं का कल्याण करने वाले। जिस संगठन में हम रहते हैं, हो सकता है वो 50 का संगठन है, 200 का संगठन है या 300 का संगठन है, क्या इन 200 या 300 आत्माओं के प्रति हमारी शुभ भावना है? उत्तर मिलेगा नहीं। अगर हम स्वयं से पूछे कि इस संगठन की ये जो 300 आत्माएं यहाँ है, क्या उन 300 आत्माओं के प्रति ही हमारी शुभ भावना शुभ कल्याण की भावना है, क्या उनके प्रति हमारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं है? उत्तर क्या मिलेगा? नहीं है। हम स्वयं को विश्व कल्याणकारी कह रहे हैं, परंतु इस छोटे से संगठन में कितनी आत्माओं के प्रति हमने क्या क्या समा रखा है अपने अंदर? क्यों समा रखा है? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है उसको, उसके संस्कारों को देखा है, तो हम कैसे स्वयं को कहलाए कि हम विश्व कल्याणकारी है? विश्व कल्याणकारी हूं और मैं विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व कल्याण, इसके नारे लगाना बहुत आसान है, परंतु हमारा मन विश्व कल्याणकारी नहीं है। कितना किस किस के प्रति हमने क्या क्या अंदर भर के रखा है, सब खाली करना पड़ेगा माल। अकल्याण करने वाले नहीं। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, स्वप्न में भी कल्याण की भावना हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ शक्तिशाली। शक्ति के शक्तिशाली को बाबा कल्याणकारी से जोड़ रहे हैं। कुमार शक्ति द्वारा जो चाहे वह कर सकते हैं, जो वही संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हो। ऐसे नहीं संकल्प आज किया कर्म पीछे, संकल्प और कर्म एक हो और साथ साथ हो, ऐसी शक्ति हो, ऐसी शक्ति वाले ही अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो सदा सेवा में सफल बनने वाले हो या कभी खिटखिट करने वाले हो, मन में कर्म में आपस में सब में ठीक, मन में कर्म में आपस में, आपस में आज का वरदान में क्या है, पासपोर्ट, कौन सा संतुष्टता का, कौन सा संतुष्टता का पासपोर्ट, कौन सा पासपोर्ट प्राप्त करना है, संतुष्टता का, इस परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो नजदीक वाले हैं उनसे, जो हमारे सारे ही अवगुणों को जानते हैं, जिन्होंने हमको जीवन के बहुत सारे प्रसंगों से गुजरते हुए देखा है, और देखा है कैसी हमारी स्थिति डगमग हुई थी। दूसरों के सामने तो हम भाषण करते हैं संतुष्टता पर, किसी को कहो संतुष्टता पर भाषण करो एक घंटे, तो बहुत शक्तिशाली भाषण कर सकता है, परंतु क्या वास्तव में हम स्वयं से संतुष्ट है? क्या ये परिवार हमसे संतुष्ट है? क्या बाबा हमसे संतुष्ट है? क्या बाहर वाले लोग हमसे संतुष्ट है, ब्राह्मण परिवार के बाहर के, लौकिक परिवार या उसके भी बाहर के जो संसार के लोग है? बहुत बार उत्तर आएगा नहीं। हो तो जाएंगे, पर हमें अंदर वो साधना भी करनी है। ऐसे नहीं संकल्प आज किया कर्म पीछे, तो मन में कर्म में आपस में सब में ठीक, किसी में भी खिटखिट ना हो, सदा अपने को विश्व कल्याणकारी कुमार समझो, तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाई हुई होगी। तो क्या सुना, चार बातें यहाँ पर कही है बाबा ने। पहली बात जो है वो कुमार और गृहस्थी एक, दूसरी बात जो कही है वो आगे बढ़ने के बारे में, तीसरी बात जो कही है वो कल्याण के बारे में, चौथी बात जो कही है वो कर्म और संकल्प और कर्म कैसे समान हो। तो सबसे पहली बात थी कि कुमार अर्थात स्वतंत्र है, कुमार अर्थात सालीम है, बटे हुए नहीं है, खंडित नहीं है, अखंड व्यक्तित्व है वो, बुद्धि यहां वहां नहीं है। बाइबल में जैसे हमेशा कहा सुनाया है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं ही दैट इज मैरिड थिंक्स अबाउट हिज वाइफ दैट हाउ ही मे प्लीज हर, ही हु इज अनमैरिड थिंक्स अबाउट द लॉर्ड दैट हाउ ही मे प्लीज हिम। जो विवाहित है वो ये सोचते रहता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं, यही सोचते रहता है दिन भर। फिर भी कभी खुश होती है क्या वो? बहुत मुश्किल से, कभी कभी। ही दैट इज अनमैरिड, परंतु जो अविवाहित है वो ये सोचता है कि मैं अपने प्रभु को कैसे खुश करूं। सीधा ही महावाक्य है। तो बोझ नहीं, स्वतंत्र बुद्धि बटी हुई नहीं है, बहुत सारी जिम्मेवारियों से बच गए हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियों से बच गए हैं। एक व्यक्ति मरता है, एक व्यक्ति और उसका मित्र साइकिल से जाते रहते हैं, दोनों की मृत्यु होती है। ऊपर पहुंचते हैं तो पहला जाता है तो धर्मराज पूछता है उसको, विवाहित अविवाहित? वो कहता है विवाहित, तो बोलता है चलो स्वर्ग की ओर, पहले ही बहुत दुख झेल लिया है जीवन में। तो उसका मित्र चंदूलाल पीछे से देख लेता है, ऐसी बात है स्वर्ग? तो कहता है मैं स्वर्ग में तो जाऊंगा पर मुझे ऊंच पद भी चाहिए स्वर्ग में, अच्छा वाला। उसकी बारी आती है तो कहते हैं, धर्मराज पूछता है विवाहित अविवाहित? वो कहता है चार बार विवाहित। तो कहता है कि चलो नर्क में, तो बोलता है ऐसे क्यों? वो कहता है कि स्वर्ग तो उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत दुख भोगा है नीचे, जो दुखी है, पागलों के लिए नहीं है। तो विवाह कभी बहुत सुंदर संस्था थी सतयुग त्रेता में, पर आज जो अस्तित्व है विवाह का वो एक सड़ी गली संस्था है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुखी करने का निरर्थक प्रयत्न करता है। कैसे सुखी कर सकेगा, वो स्वयं ही तो दुखी है, कैसे कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुखी कर सकता है? खुद ही फंसे है और दूसरों को भी फंसा रहे हैं उसमें। बाबा ने नया शब्द कहा है पवित्र गृहस्थ आश्रम, कल की मुरली में भी था, सतयुग में क्या था, पवित्र गृहस्थ आश्रम, कल की मुरली में ही एक शब्द था। उस पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना यहाँ करनी है, वो करने बाबा आया है। तो पहला पॉइंट क्या था, कुमार स्वतंत्र सालिम जिम्मेवारियों से मुक्त बोझ रहित। दूसरा पॉइंट था आगे बढ़ने की परिभाषा, आगे बढ़ना अर्थात तीव्र गति से बढ़ना, अर्थात आज जो है कल उससे आगे हो और परसों उससे भी आगे हो। तो कुमार अर्थात हार खाने वाले नहीं, शाहू भाई हार अगर यहाँ खाएंगे तो धर्मराज की मार खानी सतयुग में पड़ेगी संगम पर, और सतयुग में देवताओं के लिए हार बनाने पड़ेंगे और द्वापर में भक्त बनकर देवताओं को हार पहनाने पड़ेंगे। ये तीन कार्य करने पड़ेंगे अगर बार बार यहाँ हार खाई तो। तो दूसरी पॉइंट बाबा ने तीव्र गति की परिभाषा दी। तीसरे पॉइंट शक्तिशाली बनना है, और शक्तिशाली को किससे जोड़ा, कल्याण से जोड़ा, और कल्याण को किससे जोड़ा, हरेक आत्मा के प्रति शुभ भावना से जोड़ा। ऐसे जो होंगे वो समीप होंगे। और लास्ट में क्या कहा, संकल्प और कर्म समान हो। जो भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वही हमारे कर्म में हो, उसमें असामंजस्य नहीं हो। जो सोचे वह बोले, जो बोले वह करे, ऐसी जो आत्माएं महान आत्माएं हैं। बोले तैसा साले त्याची वंदना पाउले, अंगे झाड़ी न अंगना त्याचे दायित्व करी न। संत कहते हैं कि जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, अंगे झाड़ी न अंगना, अपने इस शरीर से उसका आंगन में झाड़ूंगा अगर कोई मुझे ऐसा मिल जाए तो, त्याचे दायित्व करी न, उसका उसकी दास्ता उसके उसकी दास्ता में स्वीकार करूंगा अगर कोई ऐसा है तो। तो जो हम सोचते हैं और जो वैसा नहीं है, कथनी करनी, उन्हें क्या कहा जाता है सुशील भाई?
धोखेबाज।
नहीं, धोखेबाज नहीं, बेवफा नहीं। 69 की मुरली खतरनाक नहीं, खौफनाक। कथनी करनी पर मुरली है एक, तो उन्हें कहा जाता है खौफनाक प्राणी। प्राणी ओम शांति।
अपने आप ही आ गई।